ओम शांति,
ओम शांति।
आप सभी बाप दादा से अव्यक्त मिलन मनाने के लिए अपने ही घर बाबा के घर मधुबन पहुंचे हैं और ये एक विशेष सौभाग्य कहेंगे कि कहां हजारों भाई बहने आते रहे पति के लिए, उन हजारों भाई बहनों में से आप कुछ चुने हुए इस समय बाबा के घर पहुंचे हैं, कुछ सौ भाई बहने। तो जब इतने कम होते हैं तो फिर सभी पर अटेंशन होता है, सभी नजर आते हैं कि कौन कौन है। अभी भले मास्क भी लगा हुआ है सभी को, और लगा के भी रखना है, में छूट नहीं है, क्योंकि अपनी सेफ्टी और दूसरों की भी सेफ्टी दोनों का ही ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी एक विशेष पालना का जो अनुभव बाबा के घर में, जो भी हमारे महारथी भाई बहने हैं, दादियां हैं, उनके द्वारा आपको अनुभव करने का ये अवसर मिला है। जो विषय है हमारा, अभी बाबा की रविवार को अव्यक्त मुरली चली थी, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो बाबा ने हमें राज योगी बनाया है, प्रजा योगी नहीं बनाया, हमारा नाम ही है राज योगी। तो राज योगी माना जिसका कर्मेंद्रियों पर अधिकार है, स्थूल सूक्ष्म दोनों ही कर्मेंद्रियों पर अधिकारी, यानी अपनी कर्मेंद्रियों को जब चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह चाहें वैसे चला सकते हैं। सामान्यतः ऐसे होता है कि कर्मेंद्रियां हमको चलाती हैं, यानी उनकी जो इच्छा होती है उस अनुसार हम चलते हैं। जो देखने की इच्छा हुई वो कर लिया, जो सुनने की इच्छा हुई वो सुन लिया, जो बोलने की इच्छा हुई वो बोल लिया। मन किसी बात पर चल रहा है तो चलता रहेगा नॉन स्टॉप, कोई कंट्रोल नहीं उसके ऊपर। तो मन चलाता है हमको, हम मन को नहीं चलाते, मन चलाता है। ऐसे ही बुद्धि के निर्णय पर कोई अधिकार नहीं, छोटी छोटी बातों में मूंझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर दूसरों की मदद लेनी पड़ती है, क्या करूं कैसे करूं समझ नहीं आता, यानी बुद्धि भी टाइम पर अपना निर्णय नहीं देती। और संस्कार तो वश में रखते ही हैं, जिसको हम कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था या चाहती थी लेकिन हो गया मेरे से, क्योंकि ये मेरे संस्कार हैं। तो इसको कहेंगे वशीभूत जीवन, जो पुरानी जीवन थी या आज की जो दुनिया की लाइफ है वो इसी तरह की लाइफ है, पूरी तरह से वो कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर के जीते हैं, उनके गुलाम हैं जैसे हम कहेंगे। लेकिन बाबा हमें ज्ञान और योग की शक्ति से कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनाते हैं। तो इसलिए उस दिन भी बाबा ने मुरली में कहा कि अपनी चेकिंग करके देख सकते हो सारा दिन में, ये ज्ञान दर्पण है हमारे लिए कि हम स्वराज्य अधिकारी हैं या नहीं। और अगर अभी स्वराज्य अधिकारी हैं तो ही हम भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं हैं तो फिर विश्व का राज्य हमें नहीं मिल सकता है। बाबा ऐसे भी कहते हैं, जैसे मुरली में भी हमें कहा, दर्पण में चेक कर सकते हो हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे या साहूकार बनेंगे, तो फिर सत्ययुग त्रेता में राजा ही मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसके बाद द्वापर कलयुग में जाकर के कोई स्टेट के राजा बन जाएंगे, एक हैं विश्व पर राज्य करने वाले, पूरे विश्व के मालिक, विश्व महाराजन जैसे कहा वो पद। फिर उसके बाद होते हैं स्टेट के राजा, जैसे हमारे यहाँ भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है और फिर उसके बाद स्टेट की मिनिस्ट्री भी है। फिर उसके अलावा भी हर शहर का अपना अपना एक सेटअप होता है। तो ऐसे छोटे छोटे राजा भी होते हैं। तो नहीं तो फिर बाद में जाकर बाबा के बच्चे बने तो एक बार कहीं ना कहीं राजाई तो पूरे कल्प में मिलनी ही है। तो फिर पोस्टपोन्ड होते होते हो सकता है वो द्वापर तक पहुंच जाए या कलयुग तक भी आ जाए। तो कौन से राजा बनना चाहेंगे? लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं ना। बावन मुरली में कहते हैं कोई राम सीता बनने के लिए भी हाथ नहीं उठाता। अगर किसी को पूछेंगे आप राम सीता बनना चाहेंगे, कोई नहीं उठाएगा। हम सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। तो फिर उसी अनुसार हमारा पुरुषार्थ भी होना चाहिए जैसे बाबा हमें कहते हैं। तो जो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, आंख कान मुख जीवा जिसे हम कहते हैं, जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, बाबा के श्रीमत प्रमाण चले, मनमत प्रमाण नहीं या परमत प्रमाण भी नहीं, दुनिया के लोग क्या कहते हैं उसके अनुसार भी कुछ लोग अपना जीवन चलाते हैं, ये ऐसा कहते हैं ना इसलिए हम ऐसा करते हैं, नहीं। जो बाबा के श्रीमत है हमारी आंखों के लिए कि हमारी दृष्टि आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, जिसको भी हम देखें, जिसके भी संपर्क में आए उसकी भ्रकुटि पर ही हमारी नजर हो, देहे पर नजर बिल्कुल ना जाए। और अगर देहे पर नजर जाती है, अब देहाभिमान तो इतना जल्दी दूर होता नहीं, और अगर देहे पर नजर जाती है तो बाबा कहता है कि देहे को टच किया माना सांप को टच किया, और अगर सांप को टच करते हैं तो वो काटता है और सांप में विष होता है। तो अगर देह अभिमान में आए और उस तरफ चले गए तो विकार को इमर्ज होने में देर नहीं लगती है। और इसीलिए कहा आत्मा आत्मा भाई भाई है, यानी देह से भी ऊपर उठ कर के जो हमारा अनादि संबंध है उस संबंध का हम अनुभव करें। स्त्री पुरुष भी नहीं देखें लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई, वो शुद्ध दृष्टि है, पवित्र दृष्टि है। और फिर शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि हो हमारी, यानी किसी के अवगुण भी हमें नहीं देखने हैं, किसी की कमियां भी नहीं देखनी। आंखों से हमें क्या नजर आए दूसरों के व्यवहार में या दूसरों के जीवन में गुण नजर आए। हो सकता है कि उसके अवगुण ज्यादा हो और गुण कम हो, ऐसा होता नहीं है कि किसी के अंदर कोई गुण ना हो, होता जरूर है, लेकिन कई बार हमारी नजर अवगुणों पर ज्यादा होती है क्योंकि ये कलयुगी दुनिया की विशेषता है कि 36 भी गुण होंगे ना तो उनको छोड़ देंगे, एक अवगुण होगा वही ज्यादा हमें दिखाई देगा कि इस आत्मा में ये कमी है। वो एक एग्जाम्पल बताते हैं कि एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और एक एक्सरसाइज उन्होंने दी बच्चों को। एक प्लेन पेपर लिया, व्हाइट पेपर, और उसमें एक कोने में एक डॉट डाला, काला धब्बा था उसमें, और फिर पूछा उनको कि ये क्या है। तो 99% ने कहा कि ये काला धब्बा है, सिर्फ एक ने कहा कि ये व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर के ऊपर एक कॉर्नर में काला धब्बा है। तो साइकोलॉजी के अनुसार क्या ज्यादा दिखाई दिया, पूरा व्हाइट पेपर था वो नहीं देख रहे थे, क्या देख रहे थे ना, जैसे हम कहते हैं कि सफेद कपड़े पर एक छोटा भी दाग पड़ जाए तो ज्यादा नजर कहाँ जाएगी, उस दाग पर ही बार बार जाती रहेगी। तो ऐसे हमारी दृष्टि है जो कलयुग में हो जाती है, लेकिन बाबा ने हमें गुणग्राही बनाया है तो हमारी दृष्टि गुणग्राही दृष्टि हो। फिर आज हम कलयुगी दुनिया में रहते हैं, तमो प्रधान वातावरण है, तमो प्रधान ही दृश्य दिखाई देते हैं हमें। तो कई भाई बहने कहते हैं कि जो हम देखते हैं उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है। आज मीडिया भी इतना पावरफुल है कि आप जो चीजें नहीं देखना चाहते वो चाहे अनचाहे भी आपकी नजरों के सामने आती रहती हैं। तो हम आंखें तो नहीं बंद कर लेंगे, आप कभी कहां बाजार में जा रहे हैं और ऐसे ऐसे पोस्टर लगे होते हैं मानो, तो हम क्या करेंगे, आंखें तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति कैसी हो कि देखते हुए भी जैसे हमने नहीं देखा, क्योंकि बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। मुरली का वरदान था ना आज, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के हमें कर्म करना है। तो हम समझते हैं ना वर्तमान दुनिया की क्या हालत है। तो हमें तो सतयुग में जाना है, हम तो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और हमें जो प्राप्तियों का अनुभव है उस आधार पर निश्चित रूप से, जैसे होता है कि कचड़े की तरफ हम देखते हुए भी नहीं देखते, कचड़ा किसी को पसंद आता है, अपने आप हम उस कचड़े से किनारा कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये सब बातें अब कैसी हैं, कचड़े जैसी हैं, तो उनकी तरफ देखते हुए भी हम नहीं देखेंगे और किनारा कर लेंगे। अब हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल में इंटरनेट जैसे ही यूज करते हैं वो अपने आप ही इंटरनेट पे ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जो आप न सुनना चाहते हैं न देखना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जाएंगे उसमें, नहीं जाना है। हमें पता है कि ये हमारी राह नहीं है। जो जो मेरा पर्पस है उसको उपयोग करने का, सिर्फ उतना ही हमने उसको यूज किया, उससे ज्यादा हमें नहीं जाना है। इसको हम कहेंगे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, जो मन की कंट्रोलिंग पावर है, वो फिर मन पर हमारा अधिकार है। तो हम कभी भी गलत दिशा में मन को नहीं ले जाएंगे। तो आंखों पर अधिकार माना, जो नहीं देखना है बाबा के श्रीमद प्रमाण वो हमें नहीं देखना। आप प्रवृत्ति में रहते हैं, बच्चे हैं घर में, बच्चे ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते, बच्चों की टेस्ट अपनी होती है, वो टेलीविजन चला के देख रहे हैं जो भी। अब हम भी घर से बाहर तो नहीं जाएंगे, वही कमरा है बैठक हमारे लिए भी, लेकिन अगर हमें नहीं देखना है तो नहीं देखना है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि सिनेमा माना सिन की माँ, तो हमारे लिए बाबा की श्रीमत है नहीं देखना है तो नहीं देखना है, या ऐसे ऐसे सीरियल, मतलब सब तरह का जो भी हम कहेंगे ऐसा जो मटेरियल है वो सब उसमें होता है, और हमें अपने मन बुद्धि को उस तरफ बिल्कुल नहीं ले जाना है। तो आंखों पर हमारा अधिकार हो, फिर कानों पर हमारा अधिकार। बाबा कहते हैं कि कानों से हम ज्ञान का ही श्रवण करें, ज्ञान रतन ही हमारे कान में पड़े, माना सत्संग जिसे बाबा कहता है कि सदा ही हम सत्संग में रहें। पर अब संसार में रहते हैं तो संसार समाचार भी हम सुनते हैं, कई तरह के संसार समाचार होते हैं, फिर एक दूसरे के समाचार भी हम सुनते हैं। अब परिवार में रहते हैं तो आपस में जो भी हमारे मित्र संबंधी हैं उनके समाचार भी हमें मिलते रहते हैं, और उसके अलावा कुछ निंदा चुगली की बातें भी होती हैं, सिर्फ समाचार नहीं होते लेकिन एक दूसरे की कमी कमजोरियों का वर्णन भी होता है। और इन सब की 63 जन्मों से इतनी आदत पड़ी हुई है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर केवल एक ही प्रकार का भोजन मिलता रहे तो फिर वो भोजन से मन ऊब जाता है, वैरायटी खाने की इच्छा होती है, ऐसा स्वभाव होता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है कि केवल ज्ञान सुनना वो थोड़ा ताकत वाला भोजन है, और थोड़ा मिक्स बातें होती हैं तो वो हमें थोड़ा ज्यादा पसंद आता है। बाबा कहते हैं कि हमें 63 जन्मों से कथा कहानियां सुनने की आदत है, आज भी जो भी संत महात्मा हैं वो कैसे ज्ञान सुनाते हैं, कैसे सत्संग करते हैं, सब शास्त्रों की कथा कहानियां ही वो सुनाते हैं जो बहुत रस कनरस पैदा करने वाली होती हैं। तो ऐसे ही कनरस की आदत पड़ी हुई है इतने जन्मों की, तो इतना सहज वो छूटती नहीं है। सबसे ज्यादा जो अच्छा रस लगता है वो है निंदा का रस, और बहनें तो प्रसिद्ध हैं उसके लिए कि अगर 2-4 बहनें आपस में बैठ गई तो क्या होने वाला है, क्या कहेंगे मैंने, सही है गलत है। आप सभी रहते हो ना परिवार में, क्या कहेंगे, हाँ या ना? कुछ नहीं कह रहे कि हम बाबा के बनने के बाद बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसा कोई है तो हाथ उठाओ। अच्छा है कुछ, हाँ सुनते हुए भी मत सुनो, जैसे बोला देखते हुए भी मत देखो। तो ऐसा होता है कि हम सुनना तो नहीं चाहते लेकिन सुनाने वाले तो हमको सुनाए बिना रहते नहीं हैं, तो फिर साक्षी होकर के सुनना है। अगर सुनना भी पड़ता है, मानो आप परिवार के बड़े हैं, आप निमित्त हैं। अब जैसे यहाँ भी जो निमित्त बहने हैं, अब जो भी भाई बहने आते हैं उनको कोई समस्या है या कोई भी ऐसी बात है परिवार की, कोई उलझन वाली बात है, तो किसको सुनाएंगे आकर के ना, बहन जी को सुनाएंगे। तो अब क्योंकि वो जिम्मेवार है तो उसको सुनना ही पड़ेगा, ना सुनने जैसी बात है फिर भी उनको तो सुनना ही है। पर कैसे सुनना है, बाबा ने हमें स्थिति बताई है कि साथी और साक्षी, बाबा मेरा साथी है और साक्षी होकर के हम सुनेंगे तो हम सही निर्णय भी दे पाएंगे, जो उनको मार्गदर्शन हमें देना है वो भी हम दे पाएंगे और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और नहीं तो अगर हम इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि आप उनके लिए डस्टबिन बन जाते हैं। डस्टबिन माना जिसमें लोग कचरा डालते हैं, तो फिर उनको पता है कि क्योंकि इनको रुचि है तो इनके पास जाकर के मैं अपनी बात सुना सकता हूँ या सुना सकती हूँ। तो जैसे ही उनका दिल भारी होगा या उनके मन में किसी की बात होगी, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको सुनाना शुरू कर देंगे। तो हमें क्या बनना है, क्योंकि ऐसी बातें कई बार फैलती बहुत हैं। आप किसी को कहते हैं कि देखो ये बात मैंने आपको सुनाई है ना, आप किसी को मत कहना, फिर वो उसका भी कोई खास होता है, वो जरूर उसको सुना देगा और फिर वही बात बोलेगा, देखो ये मैंने आपको सुनाया ना, आप किसी को मत कहना। फिर क्या होगा, वो जो नहीं फैलना चाहिए वो फैलता है और हर एक उसमें अपना अपना भाव मिक्स करता है, क्योंकि उसने क्या समझा। और इसके कारण कई बार बात इतनी बदल जाती है कि जब वो घूम फिर करके जिसकी होती है उस तक पहुंचती है, उनको लगता है कि मेरे साथ इतना बुरा, और अच्छे अच्छे संबंध कई बार इसके कारण बिगड़ जाते हैं। एक छोटी सी कहानी आती है इसके पर, सुनी भी होगी कईयों ने, कि एक बार एक ब्राह्मण थे, उनको कोई पास के गांव जाना था, तो उनको पता था लौटने में देर हो जाएगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मेरे को रास्ते का भोजन दे देना, हो सकता है लौटने में देरी हो जाए। तो उसने टिफिन बना के दे दिया, तो दिन में वो पेड़ के नीचे बैठे भोजन करने के लिए, तो जैसे ही थाली लगाई वो पेड़ पे पक्षी बैठा था, उसने उसी समय बीट कर दी और वो उनके खाने पर पड़ गई। तो ब्राह्मण थे तो उनके हिसाब से भोजन अशुद्ध हो गया, तो उन्होंने खाना नहीं खाया और फिर मन भी बदल गया कि अभी आज गांव नहीं जाते, तो फिर वापस घर आ गए। तो पत्नी ने पूछा, आप तो गांव गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए? तो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको अपनी पत्नी का स्वभाव पता था कि अगर इसको बता दिया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने कोशिश की टालने की, लेकिन जब वो पीछे ही पड़ गई तो फिर उन्होंने सुनाया उसको कि ऐसे था, जब मैं खाना खाने बैठा तो पक्षी ने बीट कर दी, तो इसलिए मेरा मन बदल गया और फिर मैं घर आ गया। पर तू ये बात किसी को कहना मत, ऐसे ही उन्होंने समझाया उसको कि भाई नहीं कहना किसी को। तो उसने कहा मैं क्यों कहूंगी। अब दूसरे दिन वो गई कुएं पर पानी भरने, चार उसकी साथी औरतें मिली और वो भूल गई, उसका स्वभाव था, और बातों बातों में उसने वो सारी बात सुना दी उनको कि ऐसे ऐसे हुआ। अब सब एक जैसा नहीं सुनते ना, कईयों का सुनते समय आधा ध्यान कहीं होता है आधा ध्यान कहीं होता है। तो उनमें से एक ने क्या सुना कि पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट की जगह पक्षी गिर गया। अब उसने जब चार लोगों को सुनाई, तो फिर उनमें से एक ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने चार लोगों को सुनाई, हाँ, फिर उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई, तो बात पहुंच गई पंचायत तक, पंचायत में पहुंची तो पंचायत वालों ने सोचा कि पंडित जी को बुलाना चाहिए, देखें वो कि कैसे पक्षी निकालते हैं। तो बुलाया गया। अब पंडित जी हैरान कि मेरे को क्यों बुलाया है पंचायत में, मैंने ऐसा क्या किया है जो पंचायत ने मुझे बुलाया। पंचायत में बुलाना माना बड़ी बात हो जाती है। तो गए वो पंचायत में, तो पता चला कि उनको मुंह से पक्षी निकालने हैं। अब वो सोचने लगे पक्षी निकालने पक्षी निकालने किसने बोला। तो दिमाग चलाया चलाया समझ में आया कि ये सारी पत्नी की करामात है, अब बचना तो था ही। तो उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मुझे क्या जवाब देना है। तो जब उनको कहा गया पक्षी निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं निकाल सकता हूँ पक्षी, लेकिन जो भी वो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। सब चले गए। हाँ, आप कहने का भाव क्या है, बात क्या थी और जब वो फैली तो क्या हो गई। हाँ, बिल्कुल ही उसका रूप बदल गया। तो कई बार इसीलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सुनी हुई बातें होती हैं कई बार वो यथार्थ नहीं होती हैं, लेकिन हम सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और दूसरों के प्रति वैसी ही धारणा फिर अपने मन में बना लेते हैं, फिर उसी वृत्ति से उनसे हम व्यवहार में आते हैं। तो इसलिए कई बार कहते हैं कानों सुनी तो छोड़ो, आंखों देखी भी कई बार सच नहीं होती है। हमने आंखों से देखा उसमें भी कई बार हमें गलत फहमी हो जाती है, इसलिए सुनी हुई बातों पर जाना नहीं चाहिए। तो हमारा लक्ष्य ये है कि बाबा की ही बातें ज्यादा से ज्यादा हमारे कानों में बने, और अगर जो भी संसार समाचार हैं या इधर उधर की बातें हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमें, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जहाँ जरूरी है, जिम्मेवारी है, वो ठीक है, हमने सुना निर्णय किया वो अलग बात है, लेकिन बाकी हमें ज्यादा उनमें नहीं जाना है। फिर मुख से जो हम बोलते हैं बाबा के श्रीमद प्रमाण, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो, ऐसे हमारे बोल होने चाहिए। कम बोलो का बाबा का भाव है अंतर्मुखी रहो, क्योंकि जितना हम अंतर्मुखता में रहते हैं उतना ही हम अंदर का सुख पाते हैं। तो कहते हैं ना कि मौन जो है वो हमें अंदर का सुख देता है। इसलिए जब आप यहाँ आते हैं मधुबन में तो आपको कहा जाता है कि जितना हो सके मौन में रहो। आप जब अपनी प्रवृत्ति में हैं, कारोबार धंधे में हैं, तब तो उतना मौन नहीं रख सकते, क्योंकि काम है तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ तो हम आवाज से परे जाने का अभ्यास बहुत अच्छा कर सकते हैं, और वो जो बाबा से अनुभूतियां हमें होनी चाहिए, जो योग की ऊंची स्थिति का अनुभव या योग के जो श्रेष्ठ पावरफुल अनुभव है, वो अनुभव हम यहाँ कर सकते हैं। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब पहले हम बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर, अपने भीतर की ओर जाएंगे। अब यहाँ भी तो हमें दैवी परिवार मिलता है और दैवी परिवार को देख करके हम भले खुश होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बातों के विस्तार में नहीं जाना कि वे एक दो से मिले, फिर उनसे पूछने लग गए, फिर उनका वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद और भी उनके आगे की बातें, उनकी लाइफ, वो ज्ञान में कैसे आए, उनके अनुभव। अगर हम उन्हीं में चले जाएंगे तो बाबा से जो हमें अनुभव करना चाहिए, आपस में एक दो के साथ तो जन्मों से रह ही रहे हैं ना, लौकिक संबंधों में तो है ही है, तो वो अनुभव करने हम यहाँ नहीं आए। लेकिन अभी हम यहाँ बाबा का अनुभव करने के लिए आए हैं, तो हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। तो जितना हो सके मौन के लिए हमें समय निकालना है, चाहे प्रवृत्ति में भी अगर एक दिन हम रख सकते हैं मौन कोशिश करके, चाहे महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, जैसा भी संभव हो सकता है वहां भी हमें कोशिश करनी चाहिए। सेंटरों पे भी हमें बहने भट्टी का चांस देते हैं, तो जिस समय भट्टी रहती है सेंटर पर उस दिन हम लक्ष्य रखें कि छुट्टी का दिन है आज, चलो हम पूरा दिन मौन में रहेंगे। फिर धीरे बोलो। कई बार कईयों का जो वॉल्यूम होता है आवाज का वो बहुत तेज होता है, वो बात भी कर दे तो ऐसा लगता है कि जैसे गुस्सा कर रहे हैं। फिर वो कहेंगे नहीं नहीं हम गुस्सा नहीं कर रहे, तो हमारी आवाज ही ऐसी है। तो बाबा कहता है कि हाँ, जो ज्ञानी हैं उनके अंदर वो सभ्यता और नम्रता भी होती है। कई बार कई बोलते हैं, हम सच बोल रहे हैं ना, तो सच बोलते हैं तो जा जाते हैं सच बोलते समय कि हम सच बोल रहे हैं। तो जो भी बात कहनी है उसको जोश से नहीं, रौब से नहीं, लेकिन बहुत मधुरता से, नम्रता से, जिसको मीठी वाणी बाबा कहता है, उसमें हमें कहना है। तो कई बार बाबा कहते हैं ये जो ये माइक है इसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मुख के माइक की आवाज को हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये रॉयल्टी है, क्योंकि हम सभी बाबा के रॉयल श्रेष्ठ बच्चे हैं, तो हमारी जो वाणी है वो इस तरह से होनी चाहिए जिससे सबको सुख मिले। कई बार हमारे मुख से ब्राह्मण बनने के बाद भी कटु वचन निकल जाते हैं, गुस्से में आकर के जब हम व्यवहार करते हैं, अब हमारा गुस्सा इतना जल्दी तो कंट्रोल नहीं होता। सबसे जो विकार है, जो सबसे देर से जाता है, मैं समझती हूँ क्रोध, कोई ना कोई बात में, क्योंकि कोई ना कोई स्थितियां पैदा होती ही रहती हैं कार्य व्यवहार में जब गुस्सा आ जाता है। और जब गुस्सा आता है तब हम बिना सोचे समझे उस समय तो जो मन में आता है वो बोल देते हैं, फिर बाद में पश्चाताप भले करते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी या किसी ने मेरा अपमान कर दिया, किसी ने हमसे झूठ बोल दिया या किसी ने मेरी निंदा कर दी। ये जो बातें हमें पसंद नहीं आती, जो हमें गुस्सा पैदा करती है, कोई गलती करता है, बार बार गलती करता है, कितनी बार समझा दिया उसको फिर वो वही गलती करता है, तो क्या कहेंगे? गुस्से में आकर के दुख देने वाले बोल बोल जाते हैं कि नहीं बोल जाते हैं? जो समझते हैं कि हमने पूरी तरह से इसको जीत लिया है, क्योंकि कोई तो परिस्थिति पैदा होगी ना, तभी पता चलेगा कि हमारी विजय हुई कि नहीं हुई। परिस्थिति ना आए और हम कहें कि हम विजयी हैं, जैसे कहें कि भाई योद्धा जो है वो युद्ध में ही ना जाए और फिर कहे कि मैं विजयी हूं, तो कोई उसको विजयी मानेगा ना? युद्ध के मैदान में विजयी बन के लौटेगा तभी कहेंगे ना कि विजयी है। तो हमारे लिए भी ये युद्ध का मैदान है ना, हम अननोन वॉरियर्स हैं, बाबा कहते हैं गुप्त सेना है। तो हमारी भी माया के साथ जो युद्ध है वो गुप्त है, तो जब तक परिस्थिति पैदा नहीं होगी और उस पर हमारी विजय ना हो तब तक हम थोड़ी कहेंगे कि हमारी उस पर विजय हो गई, तो क्या कहेंगे? जो समझते हैं कि हमने जीत लिया है गुस्से को, चाहे कोई भी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, फिर भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं, और हमारा कर्तव्य ही है सबको शांति देना। उस कर्तव्य में ही हम रहते हैं। वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो बहुत कम 10% हाथ उठा रहे हैं भाई बहने, तो बाकी अभी भी हमसे ऐसे वचन निकल जाते हैं, ऐसे ही कहेंगे तो मीठे बोल हो। हमारा लक्ष्य ये हो कि हमारे बोल सुख देने वाले हों, हमारे बोल किसी की हिम्मत बढ़ाने वाले हों, हमारे बोल किसी में आशा का संचार करने वाले हों, किसी को उमंग देने वाले हों। ऐसे नहीं किसी को क्रिटिसाइज करने वाले बोल, हम बार बार उनकी कमियों को लेकर के हम उनको सुनाते रहें, ऐसे बोल हम बोलते रहें। कई बार थोड़ा ज्ञानी होने के बाद हम अपने को थोड़ा ज्यादा होशियार भी समझते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति तो बढ़ जाती है ना, पता चल जाता है कि कमी कहाँ है, गुण कहाँ है। तो अब कमियां तो सब में ही हैं, तो फिर उनकी कमियों को लेकर के उनको सुनाते रहेंगे बार बार, लेकिन हमें स्व परिवर्तन करना है। बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया है? दूसरों को परिवर्तन करने का लक्ष्य दिया है। स्व परिवर्तन से अपने आप हमारा परिवर्तन देख करके उनको प्रेरणा मिलेगी, और खासकर परिवार में तो बिल्कुल नहीं। अगर हम परिवार में रह करके ऐसा करेंगे तो वो और ही ज्ञान से दूर हो जाएंगे। वो बोलेंगे ये तो जब से ज्ञान में गए हैं तब से हमारे पीछे ही लगे हैं, हमें छोड़ते ही नहीं हैं, हाँ कुछ ना कुछ टुक टुक टोक 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 करते ही रहते हैं, तो वो फिर बाबा के नजदीक नहीं आ पाएंगे। तो हमारे वचन जो हैं वो उनको और ही सुख दें, शांति का अनुभव कराएं, प्रेम का अनुभव कराएं, इस तरह की वाणी हो हमारी, तो वो तब होगा जब हम सोच समझ कर बोलेंगे। बिना सोचे समझे हम रिएक्ट करते हैं, जो कहा कि गुस्से में आकर बिना सोचे समझे हम बोलते हैं। फिर मन बुद्धि संस्कार जो हमारी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं उस पर भी अधिकार, लेकिन उसके पहले मुख के द्वारा हम भोजन भी करते हैं। तो खाने का जो रस होता है कई बार उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब मानो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है और डॉक्टर ने हमें परहेज बताई हुई है कि ये हमें नहीं खाना है, लेकिन जब वो पकवान हमारे सामने आ जाते हैं तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, या बाबा के भोग के नाम से हम नहीं कंट्रोल करते कि ये तो बाबा का भोग है ना। अगर मीठा, बाबा का भोग में मीठा तो जरूर बनता है, तो बाबा का भोग खा लिया तो भोग खाने से थोड़ी कोई बीमारी बढ़ जाएगी, मतलब ऐसा भी हम सोचते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं खाना है, माना नहीं खाना है, हमारे शरीर की तबीयत को, प्रकृति को हम जानते हैं और उस अनुसार जो जैसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वैसा ही भोजन हमें करना है। फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार के कोई उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, आपस में सामाजिक जो भी हमारे क्रियाकलाप होते हैं उसमें हमें शामिल होना होता है, क्योंकि हमें वो संबंधों को तो निभाना ही है। फिर वहां जाकर के खाना पीना होता ही है, और अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारी मर्यादा क्या है कि हमें नहीं खाना है। लेकिन हम सोचते हैं चलो अब आए हैं यहाँ, सबको नाराज करेंगे, आज खा लेते हैं, बाबा की याद में दृष्टि देके खा लेते हैं, फिर नहीं खाएंगे, तो सही है, करते हैं। तो बाबा की याद में दृष्टि देकर खाना वो ठीक है, वो बाबा कहता है हमको कि जब भी हमें भोजन करना है बाबा की याद में दृष्टि देके खाना है, लेकिन कौन सा भोजन? बाबा की याद में बनाया हुआ जो हमने ब्रह्मा भोजन, वहां पर जो हमारे योग्य हैं वो हम खा सकते हैं। अब जैसे जो बिना पकी हुई चीजें हैं, फ्रूट है, सलाद है, वो हम खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, या कोई जूस वगैरह लेना है वो हम ले सकते हैं, तो जो हम ले सकते हैं वो बता दें उनको। एक बार जब लोग समझ जाते हैं कि ये नहीं खाते तो हमें मजबूर नहीं करते कभी भी, ये हमारी ही अपनी कमजोरी होती है कि हम हमेशा ये एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें तो समाज में रहना है, निभाना है, हमारे भी बच्चे हैं, तो यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कल को क्या होगा, हमारे साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर हम सच सच बता दें ना उनको कि हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं और वहां पर हमारा ये नियम है कि हम शुद्ध भोजन ही लेते हैं और भगवान की याद में बनाकर भोग लगाकर ही हम खाते हैं, तो हम ये खा सकते हैं, आप हमें ये खिलाएंगे तो हम प्यार से खाएंगे, बाकी तो हम आपको बनाकर खिला सकते हैं, ऐसा भी हम ऑफर कर सकते हैं, चाहे तो वहां खुद अपने हाथ से बनाएं और सबको भी बना के खिलाएं, और ही बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन सबको खिलाएंगे तो उनके भी मन का परिवर्तन होगा। तो ये भी हमें ध्यान देना है। फिर मन की बात जब हम करते हैं तो जैसे बाबा ने मुरली में कहा कि मन मुझे चलाता है या हम मन को चलाते हैं, तो ज्यादातर ऐसा होता है कि मन हमें चलाता है, मेरा मन किया तो हम ये काम करेंगे। सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने हमें मन के लिए श्रीमत दी है, अमृत वेले से रात तक, उस अनुसार ही मेरे मन में संकल्प चलते हैं। अमृत वेले उठना है, कैसे बाबा को याद करना है, जिस स्थिति में मन को स्थित करना है, जैसे बाबा कहता है सुबह सुबह अशरीरी स्थिति का अनुभव, परम धाम में बाबा के साथ बिंदु रूप स्थिति का अनुभव बहुत सहज होता है, क्योंकि उस समय लाइन क्लियर होती है, प्रकृति का भी हमें सहयोग होता है, क्योंकि उस समय तमोगुणी वाइब्रेशंस नहीं होते। तो क्या मैं मन को जितना समय जिस स्थिति में स्थित करना चाहूं स्थित कर सकती हूं? वो एकाग्रता बन जाती है हमारी। तो अगर हमारी वो एकाग्रता रहती है, हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना चाहें, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना चाहें, तो उस स्थिति में ही मन रहे। अब आधा पौना घंटा जो हम योग कर रहे हैं या एक घंटा भी कर रहे हैं, पूरी तरह से बाबा के साथ ही मन है और कहीं मन नहीं जाता। कोई देह के संबंधों में नहीं, देह के पदार्थों में नहीं, कोई समस्याओं में नहीं, तो हम कहेंगे मन पर अधिकार है। बाबा कहता है यहां तक परिस्थितियों में भी क्यों क्या कैसे में अगर हम बहुत विस्तार में चले जाते हैं और उस समय अगर हम फुल स्टॉप लगाना चाहें कि नहीं श्रीमत के अनुसार मुझे ये सब चिंतन नेगेटिव चिंतन नहीं करना है, पता चलता है ना कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव चिंतन करने लगते हैं हमारा मन भारी होता है, हमें चिंता होने लगती है, हमें टेंशन फील होता है, हम परेशान होते हैं, हमारी खुशी गुम हो जाती है। तो समझ में आ रहा है कि मेरा चिंतन सही दिशा में नहीं जा रहा। हर परिस्थिति का समाधान बाबा ने हमें बताया हुआ है, चाहे वो देह की है, चाहे वो देह के संबंधों की है, चाहे वो साधनों के संबंध में है, चाहे प्रकृति के संबंध में है। तो उस अनुसार मेरे मन में विचार चला करके हम अपने मन को एक रस अचल अटल अडोल स्थिति में रख पाए, कोई भी परिस्थिति हो। बाबा कहते हैं परिस्थिति को स्वर स्थिति से जीतना है, विजय पाना है। तो क्या हम फुल स्टॉप लगा पाते हैं या गए एक बार उसमें तो बस फिर जैसे कि डूब गए। बाबा कहते हैं जैसे मकड़ी जाल बनाती है ना, तो अपने ही जाल में खुद फंसती जाती है। तो ऐसे ही हमारा हाल भी होता है कि अपने ही विचारों के जाल में हम खुद फंस जाते हैं और फिर उससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई पास्ट की बातों में ही, पास्ट में ऐसा हो गया, किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, बस उससे निकल ही नहीं पाते। बार बार वही बातें मन में आती रहेंगी और वो दिख जाए तो बस फिर तो पूरा ही दिन खराब हो गया जिससे वो परिस्थिति पैदा हुई। तो इसको हम मन पर अधिकार नहीं कहेंगे। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर माना ज्ञान का ब्रेक लगाया और वहीं ब्रेक लग जाए, जैसे गाड़ी को जहां ब्रेक लगाएं वहीं लग जाए तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर लगाना चाहे ब्रेक यहां और लगे वहां तो संभावना है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं अंतिम समय की जो स्थितियां पैदा होंगी, जो अंतिम समय का पेपर है वो बाबा ने बताया है। अंतिम समय का पेपर भी मालूम है और कितना टाइम मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा, वो भी मालूम है। तो फिर उस समय हम कर लेंगे, हो जाएगा, तो बाबा ने कहा नहीं होगा, क्योंकि मन तो सूक्ष्म है ना, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अभी से ही वो अभ्यास चाहिए, तब हम उसमें पास हो सकेंगे। और अगर पास नहीं हुए तो फिर सीधा ही चंद्रवंशी में चले जाएंगे। फेल होने वाले कहाँ जाएंगे, जो पास होंगे वही सूर्यवंशी राजधानी में आएंगे। तो एक बार ऐसे ही एक राजा था, उसको अपने लिए वारिस चाहिए था क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था। तो जिस योग्यता का वारिस उसे चाहिए उस हिसाब से उसने एक शर्त रखी। उसने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरी शर्त को पूरा करेगा उसे मेरा वारिस माना जाएगा और फिर वो भविष्य में राजा बनेगा। तो शर्त ये थी कि उनको एक बकरी दी जाएगी और वो बकरी को सारा दिन घास चराएंगे, और घास चर के बकरी शाम को जब दरबार में आएगी तो फिर उसके सामने घास रखी जाएगी और फिर वो घास में मुंह नहीं डाले, माना इतना उसका पेट भरा हो कि दरबार की घास में अगर उसने मुंह नहीं डाला तो वो जीत जाएगा और वही वारिस माना जाएगा। तो कुछ लोग आए और उनको वो बकरी दी गई, तो उन्होंने सारे दिन खूब चराया बकरी को कि इतना खा ले, इतना पेट भर जाए कि वो दरबार में जाकर के फिर घास में मुंह नहीं डाले। पर एक जो था उसने क्या किया कि वो बकरी को चराने तो ले गया, लेकिन जैसी बकरी घास में मुंह डालती थी उसको एक जोर से मारता था मुंह पे लकड़ी से। तो बार बार बकरी ने मुंह घास में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो घास में मुंह डाले उसको डंडा पड़े। तो थोड़ा टाइम तो बकरी ने कोशिश की, फिर उसने कोशिश करना बंद कर दिया क्योंकि वो समझ गई कि घास में मुंह डालना माना डंडा पड़ना। तो फिर सारा दिन बकरी ने घास में मुंह नहीं डाला और वो डंडा लेकर उसके सामने ही था, तो वो डंडा देखती थी और डर के मारे घास में मुंह नहीं डाल रही थी। सारे आए शाम को दरबार में और जैसे ही बकरियों के सामने घास आई, तुरंत सारी बकरियों ने फिर से घास खाना शुरू कर दिया। लेकिन जो डंडा लग रहा था जिसको, वो अभी भी डंडा लेके सामने खड़ा था और जैसे ही वो बकरी डंडा देख रही थी तो वो ऐसे ही खड़ी थी, उसने घास में मुंह नहीं डाला, तो जीत गया वो और वो राजा का वारिस बन गया। तो ये हमारे मन की स्थिति है कि हम जितनी मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं उसकी और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, वो कभी भी कम नहीं होती हैं। लेकिन अगर मन को हमें कंट्रोल में रखना है तो कौन सा डंडा लगाते रहना पड़ेगा? जो श्रीमत का डंडा बाबा ने हमें दिया है, जो श्रीमत की लगाम दी है, उस लगाम को टाइट रखना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मन उस स्थिति में आएगा कि हम समय पर उसे कंट्रोल कर सकें। तो अभी से हमें सबसे ज्यादा मन की चेकिंग और मन का परिवर्तन ही जरूरी है। अगर मन हमारे कंट्रोल में आ गया तो बाकी कर्मेंद्रियां तो अपने आप, क्योंकि उसके पीछे पीछे हैं, अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी, उनको एक एक को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और बुद्धि जो निर्णय शक्ति है हमारी, उस निर्णय शक्ति पर हमारा अधिकार होना, यानी समय पर हम सही निर्णय कर पाए। अब हमें चाहिए सहन करने की शक्ति, लेकिन उसकी बजाय हमने कर लिया सामना, गलत निर्णय हो गया। और हमें चाहिए सामना करने की शक्ति और उसके बदले हमने कर लिया सहन। फिर सहन करने के बाद हमें समाना भी होता है, पर हमने सहन तो कर लिया, समा नहीं पाए। फिर क्या होता है कि जिसके सामने चुप रहना है, अब हमें पता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, बाबा के बच्चे हैं, मुख से बोलेंगे तो डिसर्विस हो जाएगी, तो चुप रह जाएंगे, चुप रहेंगे। और फिर जैसे ही जिसके सामने हम बोल सकते हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं या परिवार है, फिर उनके आगे बोलना शुरू कर देंगे कि कितना मैं सहन करती हूँ, आपको पता नहीं है, मेरी जगह कोई और होता तो ऐसे ऐसे हो जाता। चार लोगों को हमने सुना दिया उसको बहुत, तो बाबा कई बार कहते हैं आपने सहन किया, ये तो कमाल किया, वो ठीक है, लेकिन जो उसका वर्णन कर दिया इतना, वो कमाल की बजाय धमाल कर दिया, तो फिर जमा तो नहीं होता है। आपकी वो सहन शक्ति की जो जमा होना चाहिए और जो बाबा की दुआएं मिलनी चाहिए, उससे फिर हम वंचित हो जाते हैं। तो सही निर्णय लेना और उसको उस तरह से फिर कार्य में लगाना। हमारे संस्कार, बाबा कहते हैं हमारे वर्तमान संस्कार ईश्वरीय संस्कार होने चाहिए, क्योंकि हम ईश्वरीय कुल के हैं, ये हमारा दैवी परिवार है, तो हमारे दैवी संस्कार इमर्ज होने चाहिए, जो आदि संस्कार हैं। आदि संस्कार हमारे दैवी संस्कार हैं और परम धाम के हमारे ईश्वरीय संस्कार हैं, जो अनादि संस्कार हैं। यानी जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, बाबा प्रेम का सागर है तो मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ, पहला पाठ ही हम पढ़ते हैं, बाबा शांति का सागर है तो मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ, बाबा सुख का दाता है तो मैं आत्मा भी सुख स्वरूप हूँ। तो ये संस्कार इमर्ज रूप में रहे, जो बाबा रहम दिल है, बाबा सबके स्नेही हैं, सहयोगी हैं, बाबा क्षमा के सागर हैं, ऐसे ही हर आत्मा के प्रति जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे गुण हैं, वो उस तरह से प्रकट होने चाहिए। रावण के संस्कार अगर अभी तक भी इमर्ज हो जाते हैं, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसको बाबा कहते हैं एक धर्म एक राज्य एक कुल। सतयुग की विशेषता क्या है? एक धर्म एक राज्य एक कुल की विशेषता है। तो मैं हमारा भी एक धर्म हो, यानी जो पवित्रता का धर्म है वो हमारा धर्म है, और हमारा एक राज्य माना स्वराज्य ही हो हमारा, जो माया का राज्य है वो दूसरा राज्य पर राज्य है वो, तो वो राज्य नहीं चले संस्कारों के ऊपर। कि जैसे कहा कि हम करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया ना, अब जैसे गुस्सा करना, अगर गुस्सा आ जाता है हमको तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक भी माया अपना राज्य चला लेती है हमारे ऊपर, जिस भी विकार के वश हो जाते हैं, चाहे थोड़ा लोभ के वश हो जाते हैं, थोड़ा रौब बच जाता है हमारे अंदर, थोड़ा अभिमान का मैपन आ जाता है, जो भी, तो वो संस्कार इमर्ज ना हो, सदा के लिए वो मर्ज हो जाए, आधा कल्प के लिए मर्ज हो जाए, बाबा कहता है। लेकिन जो हमारे अनादि संस्कार हैं वो इमर्ज रूप में रहें, ये अपनी चेकिंग करना। तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं रोज अपनी दरबार लगाओ, जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे रात को रोज, कि मेरी कौन सी कर्मेंद्रिय पूरा दिन ऑर्डर में नहीं चली। अगर जो भी कर्मेंद्रिय वीक है, बाबा कहते हैं अभी से ही उसको चेकिंग और चेंज करो, ऐसे नहीं कि ये एक ही कमजोर है ना, बाकी तो सब ठीक है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। बाबा कहते नहीं, वो भी माया का गेट है, एक कर्मेंद्रिय भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, वो भी कभी भी धोखा दे देगी। और बाबा ने हमें ये भी बताया संडे की मुरली में कि ये दर्पण है और उसके आधार पर आप चेक कर सकते हो कि हम क्या बनने वाले हैं। तो अगर कर्मेंद्रियों पर पूरा अधिकार है तो जैसे कहा विश्व महाराजन बन जाएंगे, स्थूल सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा अधिकार हो। पर अगर कर्मेंद्रियों के कभी कभी वशीभूत हो जाते हैं, कभी कभी अधिकारी हैं, कभी कभी वशीभूत हैं, तो बाबा कहते हैं आधे के बाद आपको फिर वो राज्य मिलेगा, यानी सूर्यवंश पूरा हो जाएगा, चंद्रवंशी में आकर के थोड़ा समय राज्य मिल जाएगा। और अगर बार बार वशीभूत होते हैं तो फिर राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं, यानी प्रजा बनने वाले हैं। फिर ये भी बाबा ने हमें कहा कि राजा बनने का मतलब यहाँ राजा नहीं बनना है, यहाँ ऑर्डर नहीं चलाना है, यहाँ तो अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना है। तो यदि हम अपनी कर्मेंद्रियों को अभी ऑर्डर में रखते हैं तो जो हमारे साथी हैं, चाहे वो लौकिक हैं चाहे वो अलौकिक हैं, वो स्वतः ही स्नेह से हमें सहयोग देंगे, वो स्वतः ही हाजी करने के लिए, हमारे कार्य के लिए हमारे साथ जब हमें आवश्यकता है तब वो होंगे। तो यहाँ तो हमें सेवाधारी बनकर रहना है, पर जितना हम स्वराज्य अधिकारी होते हैं उतना ही सभी का सहयोग भी हमें स्वतः मिलता है। तो अगर हम रोज अपनी चेकिंग करेंगे तो जो भी हमारी कमजोरियां हैं अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो हमें चेक करके चेंज करने का अवसर मिलेगा। और जो बहुत काल बाबा कहता है वो बहुत काल का पुरुषार्थ, वैसे तो अभी इतना समय बचा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी समय है उसमें वो ऐड होगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि हम लक्ष्मी नारायण बने, सूर्यवंशी बने, तो अवश्य हम वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ओम शांति।
You. सत्य।